परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत सदगुरु से देवी नदी पर ब्रह्म सु परणाम अनंत कोटि संत रामदास निषदिन करु सलाम नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। आज व्यास जी की पूर्णिमा है, आज के दिन व्यास जी का अवतार हुआ। हमारे व्यास जी नाम तो उपनाम रखा है, वास्तव में उनका नाम बादरायण था। बादरायण माने बादर अयन, अयन बोलते हैं रहने की जगह, और बदर बोलते हैं बैर को, ये बोर खाते हैं ना, इसका संस्कृत में नाम है बद्री, बदर ये नाम है बद्री नारायण, इसीलिए वहां बैर के बहुत पेड़ है। बद्री नारायण से थोड़ा और मामूली दूरी पर उत्तर की तरफ जाते हैं 21 किलोमीटर तक, वहां पर व्यास जी की कुटिया थी, बादरायण जी का वही अवतार हुआ था। बद्री नारायण भगवान भी वही विराजमान और व्यास जी महाराज ने भी वही अवतार लिया, बादरायण नाम हुआ। उस समय में जितने हमारे वैदिक मंत्र थे, ये वैदिक मंत्र बिखरे हुए थे, इन वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार ऋषि मुनियों ने किया, परंतु किसी को कौन से मंत्र का ज्ञान हुआ, किसी को कौन सा हुआ, किसी को कौन सा हुआ। तो ये वेद है, ये भगवान के निश्वास माने जाते हैं, वैदिक मंत्र है, ये भगवान के श्वास से निकले हुए। फिर इनका चार प्रकार से विभाग किया, एक ऋग्वेद कहलाता है, एक सामवेद कहलाता है, एक यजुर्वेद कहलाता है, एक अथर्ववेद कहलाता है। ये नाम तो बाद में रखे हैं, ये वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है। मनुष्य की कृति होती तो वेद का नाम और ही होता, वेद नाम नहीं होता। व्यास जी महाराज ने जितने मंत्र थे, जिन जिन ऋषियों से वो साक्षात्कार में बिखरे हुए थे, उनको चार विभागों में रखा। जैसे सामवेद का जो मंत्र होता है उसको आलाप के साथ गाया जाता है, हम भी राग रागनी में जो आलाप लेते हैं वहां के ताला की रुकती, ऐसे वैदिक मंत्रों में भी आलाप के साथ जिनको बोला जाए, जिससे संगीत विद्या का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे मंत्र सामवेद के हैं। सामवेद का यदि कोई मंत्र बोलेगा तो उसका बड़े से बड़े विद्वान भी शब्दों का जब तक साक्षात्कार नहीं होगा अर्थ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बीच में आलाप इतने लंबे हो जाते हैं नहीं समझ पाता। और ये वास्तु विद्या है, गांधर्व विद्या है, स्थापत्य विद्या है, अनेक प्रकार की और बाह्यात बातें अथर्ववेद में रख दी। बाकी सब में मुख्यतः तीन की, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, इसलिए वेदत्रयी भी बोलते हैं। इनके अंदर खास कल्याण की बातें हैं, उन कल्याण की बातों का विशेषता से हमारे व्यास जी महाराज ने प्रचार किया। पहले तो वेद बनाए, फिर वेदों का भाष्य किया, फिर भी देखा लोगों के समझ में नहीं आएगा, तो फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, ब्राह्मण ग्रंथ अलग बनाए, इतना व्यास किया। व्यास बोलते हैं विस्तार को, इतना विस्तार किया कि आज व्यास जी से बढ़कर कोई संसार में लेखक हुआ नहीं। और जो व्यास जी ने लिख दिया वो संसार में किसी ने नई बात नहीं लिखी व्यास जी के बाद। व्यासो चिष्टम जगत सर्वम, सारे जगत को उन्होंने झूठा कर दिया, अर्थात जगत की सब बातें व्यास जी के मुख से निकली हुई है। कोई दार्शनिक यह नहीं कह सकता कि मैंने नई बात कही है जो कहीं नहीं आई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो वो व्यास जी का अवतार हुआ, तो व्यास जी सबके गुरु हो गए, सबको ज्ञान दिया। कोई गुरु बनाने की पद्धति से ही गुरु नहीं होता है। एक संतों से किसी ने पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे से ज्यादा जानता है वो गुरु है। क्या आपने तो नहीं बनाया? कि गुरु बनाया थोड़ी जाता है, गुरु बनाया नहीं जाता है, क्योंकि बनाया हुआ गुरु होता है तो वो बनाने वाले के द्वारा बनाया जाएगा। तो घड़े की कीमत ज्यादा है कि कुम्हार की अकल ज्यादा है? तो मानेंगे कि भाई कुम्हार की अकल ज्यादा है जिसने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो घड़े की महत्ता नहीं है, महत्ता कुम्हार की है, क्योंकि कुम्हार बनाने वाला है और घड़ा बनाया जाता है। तो जो गुरु बनाया जाता है उस गुरु की कीमत कम होती है, जो बनाने वाला होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो कहा गुरु बनाया नहीं जाता है, तो के गुरु माना जाता है। बनाया हुआ गुरु होता है उससे कल्याण में संदेह है, और माना हुआ गुरु होता है उससे निश्चित कल्याण होता है। तो गुरु बनाना नहीं, गुरु मानना है। व्यास जी को आज भी गुरु पूर्णिमा मानते हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा क्यों मानते हैं? कि व्यास जी सबके गुरु है। अब आप हम कह देंगे हमने तो सब इस समय जन्म लिया है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का है, कोई 100 वर्ष का है, कोई 150 वर्ष का है, कोई 200 वर्ष का, हजारों वर्ष पहले व्यास जी हो गए, हमने तो उनको गुरु नहीं बनाया। अरे बनाया नहीं, मानो। व्यास जी ने भागवत लिखा, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, व्यास ने कितना काम किया है, वो गुरु हो गए, मानो। तो गुरु तो माना जाता है। अभी अपन ने देवलों में पूजन किया है तो वो सब गुरुदेव हमारे अभी इस समय मौजूद थोड़े ही है। इस समय हमारे गुरुदेव कोई मौजूद नहीं है, 9 पीढ़ी हो गई कोई मौजूद नहीं है, परंतु उनको गुरु माना है। तो गुरु मानने के कारण से जिनके दर्शन भी हमने नहीं किए उनके पूजन से लाभ होता है, उनके स्मरण से लाभ होता है, क्योंकि उनमें गुरुता थी, गुरुत्व था, गुरु भाव था उनमें। तो गुरुत्व का स्मरण करने से अपने में गुरुजनों की विशेषता अवतरित होती है। तो व्यास जी हमारे सबके गुरु हैं। आज उनका स्मरण करने से उनमें जो दिव्यता थी, उनमें जो परमात्मा की तरफ चलने की शक्ति थी, वो ऊर्जा हमको भी मिलती है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह कोई व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है, ये कोई शरीर का आदर नहीं है। दिखता तो शरीर में ही है, परंतु शरीर का आदर दिखता है, और तो करेगा कहां से, कैसे करेगा? प्रतीक मानकर, जैसे भगवान के प्रतीक को हमने एक अच्छी मूर्ति के द्वारा बना लिया कि ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान शिव है। अब कोई देखा ये तो पत्थर है, कई आदमी कहते तो पत्थर की पूजा करते हो, कि पत्थर के अंदर हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी भावना क्या है, हम इसको क्या समझ करके प्रणाम करते हैं। तो वो समझ कहाँ आती है? तो गुरु के अंदर जो व्यास जी का भाव है, गुरु के अंदर जो गुरुजनों का भाव है, वो भाव जब दिखता है तब व्यक्ति का अपने आप कल्याण हो जाता है। उसके लिए कोई अलग से जो है कोई मंत्र ले, ये क्या है, ये छोटी जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम गुडाले चलने वाले बच्चे, उनको अपनी तरफ लाने के लिए इधर खेलते हैं, चुटकी बजाते हैं, ये बच्चा गुडाले चलते चलते आता है, वो देखता है, वो मुझे बुलाते हैं, तो वो क्या है, चुटकी वगैरह, ये एक तरह से बच्चे को अपनी ओर लुभाने का तरीका है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको ऐसे करके नहीं बुलाते, उसको नाम लेके बुलाते, इधर आओ भाई, इधर आओ। जो उसकी समझ बढ़ती है त्यों उसका भाषा का प्रयोग और व्यवहार सब बदल जाता है। इसी प्रकार से जब गुरु तत्व के अंदर हम लोग ज्यों ज्यों प्रवेश करते हैं, त्यों त्यों हमारी ये औपचारिकताएं गौण और भाव की प्रधानता होती चली जाती है। व्यास जी के आज लाखों वर्ष हो गए, व्यास जी को लाखों लाखों एक हजारों है, कुछ भी हो हजारों तो मानना ही पड़ेगा, 5000 से ज्यादा तो भगवान कृष्ण को अवतार लिए हो गया, तो व्यास जी तो भगवान कृष्ण के समय में अवतरित थे। चलो ऐसी स्थिति में 5000 वर्ष पहले का जो व्यास जी के अंदर भाव था, आज उनका स्मरण करने से उनका भाव अपने में उतरता है। इसलिए ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने उसको हटाना, गुकारस्त अंधकारस्यात् रुकारस्तं निरोधकृत, गुरु शब्द का अर्थ यही होता है, जो हमारे अंधकार को दूर करे। अंधकार क्या है साहब? अंधकार तो सूर्य दूर करता है, सूर्य बाहर का अंधकार दूर करता है, लेकिन संत महापुरुष गुरुजन है वो भीतर का अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। बाहर के अंधकार से जैसे हमको हमारे पास आया हुआ सांप बिच्छू का ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रकाश होता है तो हम दूर से ही सांप बिच्छू को देख लेते हैं, इसी प्रकार से अज्ञानांधकार भी इतना हमको अंधा बना देता है कि हमारे ही अंदर सांप बिच्छू के समान काम क्रोध लोभ आदि अहंकार आदि जो विकार है, उन विकारों का ज्ञान ही नहीं होता, उन विकारों को हम स्वाभाविक मान लेते हैं। ऐसा अहंकार तो साहेब मेरी बात तो रहने दे, मैं ऐसा हूँ, मेरी बात ऐसी होनी चाहिए, ये तो आज स्वाभाविक है, कामना क्रोध लोभ ये तो स्वाभाविक है। आज जो सत्संग नहीं किए हुए आदमी है वो प्राय यही मानते हैं कि ये कोई चीज दूर होने वाली थोड़ा ही है, ये लोभ तो, ये लोभ तो रहेगा, ममता तो रहेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने 40-40, 50-50 वर्ष सत्संग करने वाले लोगों से पूछा कि भाई ये कामना और ममता ये बनाई हुई है कि अपने आप ही है, और ये मिट सकती है कि नहीं मिट सकती है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि कामना ममता ये आसक्ति ये तो सदा की है, ये तो सदा ही रहती है, मिटती नहीं है, मिटती है नहीं और हमारी बनाई हुई नहीं, तो स्वाभाविक ही है। महाराज जी ने कहा 40 वर्ष से सत्संग करने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, ये मिटती नहीं है। तो फिर क्यों सत्संग करते हो? गीता आदि में क्यों कहा है कि ममता वगैरह की कम हो सकती है, बस मिट सर्वथा नहीं मिट सकती, कम हो जाती है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जो कम हो सकती है तो वो मिट भी सकती है कि ब्रो? धारणा बना ली ना, मिट नहीं सकती, धारणा ही बना ली, फिर बताओ कैसे मिटे? तो असली सत्संग के बिना लोगों को पता नहीं चलता है। ये अंदर जो सत्संग होता है ना, ये खास गुरु होता है, इसलिए हमारे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, भागवत में आता है, आप खूब सुनते हो। 24 गुरुओं में से किसी एक भी गुरु ने ये नहीं कहा कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ले ली कि अच्छा ये कबूतर जाल में फंस गया, समझदार होकर फंस गया, उसके बच्चे और कबूतरी जाल में फंस गई, उनको देखा और उनके आसक्ति में वो भी आकर के फंस गया। तो इसका मतलब आदमी ऐसे जानबूझ करके संसार में आसक्ति से फंसता है, ये शिक्षा ले ली। अब कबूतर को क्या पता कि ये मेरा चेला है। वेश्या को गुरु बनाया, वेश्या को, चील को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया। गुरु बनाया का अर्थ है कि उनके अंदर से शिक्षा ले ली। ये बताओ, ये तो कोई रोक नहीं सकता। आज व्यास जी के अंदर जो विशेषता है, आज महर्षि में जो विशेषता थी, उनके ग्रंथों से आप हम सभी विशेषता ले सकते हैं। कोई मना कर सकता है क्या? है संसार में कोई ऐसी शक्ति? हम महाराज जी का प्रवचन सुने और उससे हमको ज्ञान और हम लाभ ले, कोई आपको रोक सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा आपका रेडियो बंद कर देगा, ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ से पुस्तक छीन लेगा। लेकिन जो बात महाराज जी से अपने को मिली है, जिससे हम लोगों को दिशा बोध हुआ है, उसको कोई छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता, कोई आ जाओ। तो ये महापुरुष, ये गुरु बनाने की बात किस क्यों बोलते हैं? ये गुरु बनाने के लिए गुरु नहीं बोलते, ये वास्तव तात्विक ज्ञान लेने के लिए बोलते हैं। तो प्रारंभ में बच्चे को अंगुली पकड़ के जैसे चलाते हैं, तो इसलिए प्रारंभिक रूप में कहा कि बड़े आदमियों की बात कैसे माने? गुरु मानोगे उनका, उनका उनको गुरु मानोगे तो उनकी बात का आदर होगा, उनकी ज्ञान का आदर होगा। तो उनके ज्ञान का आदर होगा, उस आदर की तरफ ले जाने के लिए तो गुरु बनाओ, गुरु कहे वैसा करो, गुरु की शरण में रहो, गुरु के वचनों का पालन करो, गुरुओं की सेवा में रहो, गुरुओं के मन के साथ मन मिलाओ, तुम्हारा मन पवित्र होगा। ये बच्चों को अंगुली पकड़ने के समान है। ऐसा करते हुए जब उसको लगता है अरे गुरुजनों की तो ऐसी कृपा होती है, उसका हृदय गुरु रूप होने लगता है, उसके लिए कहा जाता है। आजकल इसका हम लोग दुरुपयोग करने लग गए, हम लोग दुरुपयोग ये करने लगे, गुरु शिष्य के संबंध को एक व्यवसाय बना लिया कि तुम तो हमारे चेला हो, दूसरी जगह ज्ञान क्यों सुनते हो, तुम हमारे चेला हो, तुम हमको ही भेंट पूजा करो। भेंट पूजा तो एक आंतरिक श्रद्धा का प्रतीक मात्र था, अब वो होते होते हमने व्यवसाय बना लिया। जहाँ गुरु और शिष्य के संबंध में व्यवसायत्मिका भाव, व्यवसायत्मिका कल्पना होगी, कोई व्यवसाय की भाव हो जाएगा कि हमारे शिष्य हैं, इनसे हमारी इतनी आमदनी होती है, इतनी हमको भेंट होती है, वहाँ तो भाई गुरु और शिष्य दोनों का ही कल्याण होना मुश्किल है। शिष्य का तो फिर भी हो सकता है, गुरु का कल्याण होना मुश्किल है। एक बार जयदयाल जी गोविंद का ने कहा था कि आजकल जो लोग गुरु बनते हैं उनमें तो हमारी श्रद्धा नहीं है और उनके कल्याण में तो हमको संदेह लगता है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनमें श्रद्धा रखने वाले हैं, उनको देख करके हमारे मन में बड़ा आदर का भाव होता है कि देखो इतनी पोल है इनमें, फिर भी ये इनको गुरु मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, पूजते हैं, बड़ा आदर देते हैं, इन लोगों का तो कल्याण हो जाएगा। जयदयाल जी गोविंद का जी ने कहा। महाराज जी का कभी ये कहने का स्वभाव नहीं था, पर एक बार गीता भवन गुरु पूर्णिमा में, जो शायद उनके जीवन की अंतिम गुरु पूर्णिमा हो सकती है, पूरा याद नहीं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर महाराज जी ने ये बात कही थी कि आप परमात्मा की तरफ चलो, और यदि आपको बहुत ही ज्यादा गुरु 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 करने हो, चलो हमको गुरु मान लो बोले, पर चलो परमात्मा की तरफ। आप लोग यदि गुरु परमात्मा की तरफ चलते हो और उसमें यदि हमको गुरु मानने में आपको सहायता मिलती हो, तो बाबा हमको गुरु मान लो। ये स्वभाव नहीं था महाराज जी का कहने का, न कभी गुरु बनाने की प्रक्रिया में गए, लेकिन उस दिन महाराज जी ने ये बात जरूर कही कि आप यदि हमको गुरु मान लो बोले, पर परमात्मा की तरफ चलो, तब है। ऐसे कि साहब हम स्वामी जी को गुरु मानते हैं और चलो यूं चलते हैं, उससे लाभ नहीं है। ये गुरु पूर्णिमा आज का हमको ये साल का एक साल बीत गया हमारा, हम कहाँ तक आगे बढ़े या पीछे रहे या वही रहे, इन सब का मूल्यांकन करने का दिन है ये। हमारे स्वभाव में कितना सुधार हुआ, बड़े बड़े महात्माओं ने जो उपदेश दिया है, जो उपदेश स्वयं ही तो गुरु है, हमारा गुरु हमारे अंदर है, ये भागवत खुद बोलता है। भागवत कहता है कि अपना गुरु खुद है, और जो अपने ज्ञान का आदर नहीं करता वो किसी के द्वारा सुनाई हुई बातों का आदर कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने भी उद्धव जी को उपदेश दिया तो सीधा उपदेश नहीं दिया है, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश देने से पहले दत्तात्रेय की कथा सुनाई है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है तो वो वहां से उपदेश दिया है जो अर्जुन बात जानते थे, हुई जानते थे, वहां से उपदेश दिया है। ये नहीं कहा कि देख अर्जुन अभी तो तू लड़ाई कर, बाद में ना अपन बैठ करके रात्रि में इस विषय में चर्चा करेंगे, अभी तो लड़ाई कर। यदि भगवान इतना भी कह देते ना कि मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू मुझे गुरु मानता है तो मैं तुझे आदेश देता हूँ, जाओ अभी तो युद्ध करो, कल्याण की बात रात्रि में आराम से बैठ के करेंगे, जब युद्ध नहीं होगा तब करेंगे, ऐसी बात कहनी चाहिए थी, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान की भाई कल्याण तो चाहे जब हो जाए, चाहे जब हो सकता है, आत्म कल्याण में भगवान की दृष्टि में कोई परिस्थिति विशेष कारण नहीं बनती। घर का सब काम करते हुए हम कल्याण कर सकते हैं, माताएं बहनें घर का सारा काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, गाय दूती है, बाल बच्चों का पालन पोषण करती हैं, झाड़ू निकालती है, आए गए मेहमानों का स्वागत करती है, इसी में ही कल्याण छिपा है, सब में कल्याण छिपा है। तो ये भावना हमारे अंदर हो तब गुरु बनने का जो है रास्ता ही और होता है, और गुरु बनाने का भाव ही और होता है। इस दृष्टि से अपने को अपने आप का परीक्षण करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। उसी का ये दिन है, और बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ आप भगवान को स्वीकार करें, महापुरुषों की वाणी को स्वीकार करें, और अपने कल्याण के मार्ग में आप हम सभी मिल करके आगे बढ़े। राम
बोले राम जी महाराज की, बोले श्री हरि राम दास जी महाराज की, बोली सिंतल खेड़ा पाराम धाम की। इली मारी आयुड़ा सतगुरु सनली जो वारना ये, हेली मारी आयुड़ा संतारा ली जो वारे नारे, जासू बड़े तिहारो मान, जासू बड़े तिहारो मान, ए मान रिहेली आयुड़ा संतारा ली जो वारे नाये, हेली मारी आयुड़ा संतारा ली जो वारे नाये। नुगरा मानस री संगत छोड़ दे, हेली मारी नुगरा मानस री संगत छोड़ दे, ए जासू गट जाए तारो माने, जासू गट जाए तारो मां, ए माने मारी हेली आयुड़ा संतारा ली जो वारनाए, हेली मारी आयुड़ा संतारा ली जो वारनाए, ए जासू बड़े तियारो मान, जासू बड़े तिया वरनाए हेली मारी आयुड़ा माँ पुरुषारा लीजो वरनाए आज तो अंबर में चमके बिजली हेली मारी आज तो अंबर में चमके बिजली यो तो बरसेर मूसल धार यो तो बरसे मूसल धार मारी हेली आयुड़ा संतारा लीजो वरनाए हेली मारी आयुड़ा संतारा लीजो वरनाए जासू बड़े रे तियारो मान जासू बड़े तियारो मान ए मान मारी हेली आयुड़ा मां पुरुषारा लीजो वरनाए हेली मारी बिरजण मां पुरुषारा लीजो वरनाए आम तो पढ़े ने रस आमलिए हेली मारी आम तो पढ़े ने रस आमलिए तू तो मन मेरे धीरज धार तू तो मन में धीरज धार धार मारी हेलिए आयुड़ा मां पुरुषारा लीजो वरनाए हेली मारी आयुड़ा सतपुरुषारा लीजो वरनाए जासू बड़े तियारो मान जासू बड़े तियारो मान मारी हेली आयुड़ा संतारा लीजो वरनाए हेली मारी आयुड़ा संतारा लीजो वरनाए हेली मारी वार